बड़ कृपा कइले कृष्ण अधमेर प्रति बड़ अभी उसके बीच में प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत से प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय से चार श्लोक उक्त किए हैं। श्लोक को पढ़ लेते हैं, आप को सुन लीजिए, अगर कोई पढ़ सकते हैं बोल सकते हैं। सुन्नतांग स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हिद्यंतस्थो अभद्राणी विधुनोति सुहूत सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी तदारजस्तमो भावा कामलोभाद अरे तस श्लोक है क्या तदारजस्तम भावा कामलोभादयश्च चेतेतेरनाबिद्धं स्थितं सत्य प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते भिद्यते हृदयं ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयः खीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनि ईश्वरे रजतमोहते तबे पाइबे निस्तार रजतम हृदय भद्र सब घुचिबे ताहार हृदय बड़ कृपा कइले कृष्ण अधमेर प्रति की करे बुझावो कथा बरसई चाही की करे खिद्र आमी दीन हीन कोन शक्ति नाई आमी बड़ कृपा कइले कृष्ण अधमेर प्रति बड़ अथच ए ने छो प्रभु कथा बोलिबारे अथच ए जे तुमार इच्छा प्रभु करो ए बारे तुम्हारा बड़ कृपा कइले कृष्ण अधमेर प्रति बड़ अखिल जगत गुरु वचन से अमार अखिल जग অলঙ্কৃত করিবার ক্ষমতা তোমার, অলঙ্কৃত বড় কৃপা কইলে কৃষ্ণ অধমের প্রতি, বড় তব কৃপা হলে মোর কথা শুদ্ধ হবে, তব কৃপা শুনিয়া সবার শোক দুঃখ যে ঘুচিবে, শুনিয়া বড় কৃপা কইলে কৃষ্ণ অধমের প্রতি, বড় আনিয়াছ যদি প্রভু আমারে না চাতে, আনিয়াছে নাচাও নাচাও প্রভু নাচাও সে মতে, নাচাও না কাষ্ঠের পুতলি যথা নাচাও সে মতে, কাষ্ঠের পুতলি যথা এ বড় কৃপা কইলে কৃষ্ণ অধমের প্রতি, বড় ভক্তি নাই বেদ নাই নাম খুব ধর, ভক্তি নাই ভকতি বেদান্ত নাম এবে সার্থক কর, ভকতি বেদান্ত নাম বড় কৃপা কইলে কৃষ্ণ অধমের প্রতি, বড় কৃপা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ
हे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश रुक्मिणी द्वारिकाधीश जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
हरे कृष्ण ये जो भजन हम लोग अभी गाए ये प्रभुपाद जी आपने स्वहस्त लिखित जब इसी प्रकार दशा था मैं बताया बोस्टन में बोस्टन से जब न्यूयॉर्क शिप जा रहा था तब वो कार्गो शिप के अंदर आपने स्थान में आपने जो कैबिन था उसमें बैठ करके रोते रोते भगवान की याद करके अपने स्थिति को उन्होंने लिखे थे इस भजन को इस पोएम को लिखे थे तो उनके मनोभाव इसमें प्रकट होता है कब भी मनोभाव अभी इस्कन बना नहीं था ना और स्वप्न में भी नहीं कोई किसी को पता था ऐसा कोई सोसाइटी होगा कुछ होगा नहीं 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 बनाने वाले तो अभी मैन्युफैक्चरर तो अभी शिप में ही थे तब उसके अर्थ पोएम क्या लिखे उसको थोड़ा बंगाली में है हम उसको हिंदी में थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे आपको उसके बाद में फिर कुछ चर्चा करेंगे तो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने मुझे से बताया था कि मन में बड़ा क्रेज था पहली बार अमेरिका जा रहे कब देखूं कैसे देखूं तो जो बोस्टन में वो सीप रहा वो सीप एक्चुअली पूरा निकट में नहीं जाता बड़ा सीप था ना वो दूर में रहता है प्रभुपाद जी ने सीप के जो कैप्टन थे मिस्टर पांडे उसको जाकर रिक्वेस्ट किए बोले पांडे जी ये संभव हो सकता मैं थोड़ा अमेरिका जा करके टच करके आ सकता हूँ देख सकता हूँ भाई अब सब क्रेज रहता है ना फर्स्ट टाइम हाउ इट इज कैसा है क्या है हमारे लिए तो स्वर्गलोक जैसा लगता है ना कभी लोग तो ऐसे सोचते हैं अमेरिका दिया वास तो रूपा जी ने भी पहली बार जा रहे थे बोले थोड़ा कैसे देखूं बोस्टन तो अमेरिका का है स्थान तो उन्होंने एक छोटा सीप और नौका अरेंज किया बोले ओके ओके स्वामी जी आप जाकर घूम कर आइए अब इतने टाइम तक आ जाना हम अभी खड़े हैं पार्क है आ जाना तो एक छोटे बोट अरेंज करके स्वामी जी को भेजा स्वामी जी गए कागजात बना के दिया था वहां से निकल करके गेट पास अगर ले गए थे सिप में निकल करके बोस्टन सिटी अमेरिका में थोड़ा बाहर गए बाहर जाकर खड़े हो तो सन्यासी ड्रेस में थे अब यहाँ विदेश में चिड़ियाखाना में भी ऐसा जंतु कोई नहीं थे, क्योंकि यहां भारत वर्ष से भी जो लोग सो गए थे वो लोग सब सूट पेंट वाला जाते, प्रचारक भी इसी प्रकार के जाते थे। इसी प्रकार के आज इट इज ड्रेस में एक 70 साल के बूढ़ा व्यक्ति ऐसे कोई जाए वो तो उनको ध्यान मन कुछ देखे नहीं थे, जाने थे, मतलब चिड़ियाखाना भी नहीं था, कार्टून भी नहीं बना पाते थे ऐसा, क्योंकि आइडिया नहीं था उनका। वो जाकर जो रोड साइड में खड़े हुए, मेन रोड के साइड में, कोई नहीं देखा उसके ऊपर, पता नहीं क्या पाल कैसे आ गया, कोई नहीं देखा। वो बिल्कुल ट्रैफिक चौराहे के पास खड़े थे प्रभुपाद जी ने, इधर से लोग आ रहे थे यहां तक, तो कोई ये रिक्शा, ई रिक्शा की ऑटो तो थ्री व्हीलर है ही नहीं, यहाँ फोर व्हीलर से नीचे कुछ होता ही नहीं है, फोर व्हीलर के नीचे फिर अपना पैदल होता है, बाकी उसके बीच में कुछ नहीं होता। हमारे जैसे साइकिल है, मैंने अब थ्री व्हीलर है और क्या क्या कितने सब निकाल है, लेकिन उनका कुछ नहीं है, सीधा पैदल चलो नहीं तो फोर व्हीलर। साइकिल चलाना है तो घर में चलाओ एक्सरसाइज के लिए, ये नहीं चला सकते। अब बाकी ऑटो ये फिर तो होता ही नहीं, वटांगे मांगे ये सब कुछ। तो अब उनका भी यही व्यवस्था है, ट्रैफिक लोग जो बड़े बड़े शहर होता है ना, जैसे दिल्ली शहर में आप रहते हैं, आपको थोड़ा अभिज्ञता है, बिल्कुल सेम है। दिल्ली शहर में कोई मेन चौराहे पर जाओ देखो, एक एक मिनट बत्ती में क्या हाल होता है, लोग चलता है कि मैं अभी चलूं, इसी क्षण चल जाऊं, इतने व्यस्त रहते हैं जाने के लिए, इतने उनको पड़ी रहता है, पता नहीं एक मिनट में तो हो क्या जाएगा, भाई खड़े रहो, नहीं रेड लाइट तो जंप करना ही है, इसमें मजा आता है। अब इतने फास्ट लाइफ, सब इधर से उधर से चारों तरफ लोग आते हैं, भागे भागे आते हैं, मैं जाऊं ये करो वो करो। उनके इतादृश रजोगुण को देख करके कितने हजारों गाड़ियां खड़े हो जाते, सब फास्ट लाइफ जाना चाहते हैं। वो यहाँ जो ट्रैफिक कंट्रोल हमारे तरह नहीं है, यहाँ वहां बड़े सोफिस्टिकेटेड हाई फाई ट्रैफिक कंट्रोल बिल्कुल पक्का चलता है, अब बिल्कुल इतने गति में गाड़ियां चलता है, रोड भी अच्छा है, गाड़ी भी अच्छे होता है, सब कुछ अच्छे है वहां। हमारा तो इधर पता नहीं, ट्रैफिक का जब बारिश हुआ तो लाइट ही नहीं जलेगा, लाइट जलेगा तो जलता ही रह जाएगा, लाल कभी ग्रीन होगा ही नहीं, कोई ग्रीन हुआ तो लाल होगा ही नहीं, मरे क्या लोग क्या करेंगे बेचारे। ट्रैफिक पुलिस तो कहीं और खड़ा होगा, पता ही नहीं। तो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, बिल्कुल सुव्यवस्थित है, लेकिन इतने फास्ट लाइफ कोई नहीं देखना चाहता, सुनना चाहता। अमेरिका में जो अति उच्च शिक्षित बहुत एडवांस्ड लाइफ में उनका कल्चर कैसा, आजकल दिल्ली फिल्म हो गया द्वारका, अगर मैं भी मैं देखता हूँ, सब जो एडवांस लाइफ होते हैं इसे लोग बहुत प्रगत जो हो गए हैं, वो जहाँ रहते हैं ऐसे चिड़ियाखाना की तरह हम भी रहते हैं, जो 10x12 फ्लैट में, इसमें कोई इसी फ्लैट से, लेकिन वो जो रहते हैं उनके पड़ोसी जो रहता है 25 साल रह चुके हैं, लेकिन आप दूसरे को शक्ल नहीं देखे होंगे, वो मर जाए कुछ हो जाए नहीं पता नहीं चलेगा, यही उनके सिविलाइजेशन है। हमारा तो भाई उनके घर में खाना नहीं मिला, हम जाकर पूछेंगे भाई साहब ठीक है, नहीं नहीं उनके कोई नहीं पूछेगा, पूछने से अभद्रता मानते हैं उनको, क्यों पूछते हैं मुझे, हमारे घर का प्राइवेट मैटर पूछना है, अपना करो। कोई नहीं पूछते, इससे संपर्क ही है नहीं उनका। अरे भाई बहन माँ बाप का संपर्क नहीं है, पशु पक्षी में होता है क्या संपर्क, जैसे देखते हैं पशु का कोई है, मेरा माँ है मेरा बहन, ऐसे नहीं होता ना, वही सभ्यता है जो हम जो एडवांस करते हैं ना, एडवांस करके पशु बनकर छोड़ेंगे, जब तक हम पशु नहीं बन जाते हैं तो बोलेंगे ये क्या एडवांसमेंट है यार, माँ मम्मी बहन भाई ये क्या, सब आउटडेटेड है अभी तो कुछ सबके। तो इस प्रकार से किसी के पास कोई रस नहीं, संपर्क नहीं, इस प्रकार केवल कमाना खाना और ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, इसी प्रकार के धर्म में धर्मित, इसको देख करके खड़े रहे आधे घंटा अमेरिका को देखे, उनका जीवन शैली को इस प्रकार मनोभाव को देख कर, रजोगुण को देख करके प्रभुपाद जी ने पूरे हताश होकर के आए, बोले यहां मुझे कौन सुनेगा, तो देखे तक नहीं, देखते तक भी नहीं, ये पता नहीं कोई कार्टून है कि कोई जंतु है कि क्या है, हमारे सुनेंगे क्या, इतने हताश हो गए, निराश होकर बिल्कुल मुंह नीचे करके आए, बड़े लोडेड आ करके अपने कैबिन में बैठ करके, और किसको बोलेंगे बात, अब आ चुके महीना दिन के यात्रा करके समुद्री पथ से आ चुके हैं, अब ये अवस्था अमेरिका का देख करके इतने हताशा आ गया, मैं क्यों आया क्या करूं, इस वृद्ध अवस्था में आया, बचूंगा तो रास्ता में दो हार्ट अटैक हो चुका है, अभी क्या मेरा दशा होगा, क्यों आया, ये लोग तो कुछ नहीं होने वाला है, कोई सुनेंगे नहीं, मुझे देखेंगे भी नहीं। इतने दुखी और हताश होकर के आकर के बात किसको कहेंगे, कोई शेयर करने वाले कोई थे नहीं, एक जहाज के अंदर कोई तो उनके भावना समझ नहीं रहे थे, वर्कर्स थे और एक कैप्टन था, बड़े मुश्किल से कैप्टन थोड़ा ईपी के ब्राह्मण था, बस इतना ही था, लेकिन वो भी कोई रेगुलेटरी प्रिंसिपल का नहीं था। इस प्रकार के होते हैं सब, समुद्र में चलते हो तो नॉनवेज खाना उनका तो नेचुरल होता है, तो किसको और कहेंगे, बैठ करके अपने कबाड़ बंद करके केवल एक ही शेयर करने वाला मित्र उनको मिला, वो कृष्ण। कृष्ण को ही उनके दुख व्यक्त करेंगे, उनकी दशा को शेयर करेंगे, इसलिए बैठ करके आंख से धार धार आंसू बह रहा था, रोते रोते कपी पेन निकाले, बोले बोलूंगा क्या लिखूंगा, वो कृष्ण के लिए, ये कृष्ण के लिए उत्सर्ग उन्होंने ये लिखे थे ये पोएम। इससे शुरू करते हैं इसी भावना में, बड़ा कृष्ण कृपा कैला कृष्ण अधम मेरा प्रति, कृष्ण मैं तो अधम ही हूं, किसी प्रकार के अच्छे गुण मेरे पास नहीं है, अधम समझते ना, डिस्क्वालिफाइड, सबसे नालायक, इसको अधम कहते हैं, मैं ऐसे अधम हूं, उत्तम और उसका अपोजिट है अधम, मैं तो अधम हूं ही, था ही, अभी भी हूं, लेकिन आप मेरे ऊपर बड़ा कृपा किए इस अधम के प्रति, इतने बड़ा कृपा किए कृष्ण अधम मेरे प्रति, लेकिन ये अमेरिका मुझे क्यों लेकर आया, इंडिया में था जैसे था ही था, वृंदावन में ही था, वृंदावन भाई कोई बूढ़े उम्र में जाते हैं शरीर छोड़ने के लिए वृंदावन भाई, हम पोएम में बोलते ना, जब जब क्या इत प्राण तन से निकले इतना तो स्वामी, ऐसे कुछ बोलते ना, मैंने यही प्रोजेक्ट रखते हैं भाई, कुछ भी करो करो मैं दिल में बिता, लेकिन यही करो कि लास्ट लाइफ मेरा लास्ट वृंदावन में हो जाए, तो ये प्रार्थना करते हैं, और ये लास्ट लाइफ में वृंदावन छोड़ करके अमेरिका जा, कितने दुख की बात है ना, नहीं लोग आते हैं कहां से यहां शरीर छूटने के लिए, और इस शरीर छूटने के समय में जा रहे हैं विदेश अमेरिका गए, तब इसलिए बोलते बड़ा कृपा कैले कृष्ण अधम मेरा प्रति, मैं अधम के प्रति तो आप बड़ा तो कृपा तो किए, लेकिन ये तो मुझे समझ में नहीं, किला गई आने ले है था करो अवे गति, मुझे क्यों लेकर आया इधर, इतने बड़े सुपर प्लानिंग करके मुझे लेकर कहा, गुरुजी का बारंबार चिट्ठी आता था, विदेश जाओ वहीं प्रचार करो, विदेश जाओ विदेश जाओ, विदेश आए गए, ये क्या दशा है, व्हाट कैन आई डू हियर, क्या करूंगा इधर, किला गई आने लमते, मुझे किस लिए लाया तुमने, इतने बड़े जोखिम उठा करके मैंने क्या क्या नहीं किया विदेश आने के लिए, फ्लाइट में तो आ नहीं सका, एक मालगाड़ी, आप लोग सब ट्रेन में गए होंगे, लेकिन कभी गुड्स ट्रेन में गए, एक पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन देखे तो होंगे ना, मालगाड़ी होता ना, इसमें बैठे होते तो एक्सपीरियंस होता, बैठे तो है नहीं, ऐसे शिप में भी कार्गो शिप पैसेंजर शिप होता, ये कार्गो शिप में गए थे मालगाड़ी में, जिसमें कार्टून में माल लोड होकर, इसी में साथ माल की तरह लोड होकर गए थे, बोलते इस दशा में जा करके किस लिए मुझे लाया इतने कष्ट से यहाँ, किला गए आने लो है था करो अवे गति, अब जो लेकर आया मैं तो वापस भी जा नहीं सकता हूं इस दशा में, अब क्या होगा गति आपका हाथ में, आप ही करो, किसको मैं बोलूं, तो कृष्ण को डायरेक्ट शेयर करते हैं अपने मन की बात, मुझे अब लेकर के आया अब क्या होगा, बता पहुंच तो गया मैं अमेरिका में, आप पहुंच कर देख कर आया, अभी आधा घंटा खड़ा था अमेरिका के लैंड पर, अब देख कर मुझे जो दशा दिखा मैं तो बिल्कुल हताश हो चुका हूं, क्या करूंगा मैंने, क्या गति होगा, आछे किछु कार्य तब यही अनुमान, लेकिन मैं तो अनुमान करता हूं जब मुझे वृंदावन से उठा करके इतने परेशानी इतने तकलीफ मुझे यहां तक ले आया, एक कार्गो शिप में एक मालभाई जहाज में मुझे उठा करके अमेरिका तक ले आया, किसी प्रकार से मेरे पास कुछ पैसा पत्र नहीं है, किसी से भीख मांग करके हेल्प लेकर जैसे तैसे महीना दिन ट्रैवलिंग शिप में अंदर समुद्री पथ यात्रा करके अमेरिका पहुंच गया, तो मतलब कुछ तो प्लान होगा आपका, आछे किछु कार्य तब, हे कृष्णा आपका कुछ तो काम है, मैं अनुमान करता हूं जरूर, मैं इतना विश्वास करता हूं आपके मैं भक्ति होने के लिए, आपके आपके लोग होने के लिए प्रयास करता हूं आपके पार्टी के, तो जब मुझे यहां तक लेकर आया तो डेफिनेटली आपका तो कुछ प्लान होगा मेरे लिए, आछे किछु कार्य तब यही अनुमान है, मैं यही अनुमान करता हूं कि कुछ मेरे लिए तो आप सोचे होंगे, नहे के ना आनी बेना यही उग्र स्थान है, अगर आपका कुछ मन में प्लान नहीं है नहीं तो ये उग्र स्थान में क्यों लेकर आया मुझे, बोले कृष्ण आपके क्या, आपके जो शुद्ध प्रतिनिधि, आपके जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हमारे गुरुजी हैं, वो तो मुझे पता नहीं 5-5 लेटर भेजे, नहीं विदेश जाओ विदेश जाओ। तो मतलब आपके कुछ तो प्लान है, कुछ प्रोजेक्ट यू हैव, नहीं तो आपके लोगों के हिसाब से मुझे बार बार क्यों प्रेशराइज किया जाओ करके। तो नीबे न उग्र स्थान, इतने महा उग्र स्थान, उग्र स्थान समझते ना, उग्र कर्म जैसे गाड़ी घोड़ा, टू पासनेट वर्क, टू पासनेट वर्क को उग्र कर्म कहते हैं। तो इसलिए ये उग्र स्थान है, प्रभुपाद जी सबसे बोलते ये कितना उग्र स्थान है, यहाँ कोई आध्यात्म को जो कोई स्वप्न में नहीं सोचते हैं, केवल खाए पिए मरे बास इसी के बंदर से पड़े हैं, उग्र स्थान है, है फैल। तो इस उग्र स्थान में मुझे किस लिए लाया तूने, कुछ तो प्लान है आपका। और तभी बोलते हैं रजो तमय गुणे एरा सवाई अच्छन, मैं देखता हूं घोर रज गुण में तम गुण में वो लोग पूरा डूबे हुए हैं, पूरा अच्छन है ए टू जेड। कोई एकाध भला होता, ड्रेस भी ऐसा, काम भी ऐसा, ड्राइविंग ऐसा, गाड़ी ऐसा, खाना पीना भी ऐसा, थिंकिंग ऐसा, एवरीथिंग सब रज और प्रसिद्ध को तो तम में जाएंगे, रज और तम गुण में बिल्कुल भरपूर है, अच्छन है। एरा मतलब ये सारे अमेरिका वासी, वासुदेवा कथा रुचि नहे से प्रसन्न। वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण, अभी काल ही वासुदेव के घर में भगवान पैदा हुए, तो उनका नाम वासुदेव हुआ, उनका वासुदेव के पुत्र का नाम वासुदेव। तो वासुदेव के कथा के प्रति उनका तो बिल्कुल रुचि नहीं है, जानना नहीं चाहते, जानते नहीं हुई वासुदेव, उनको पता नहीं। तो इसी स्थान में क्या करूंगा आकर के, तबे यदि तब कृपा है अहेतु की, लेकिन फिर भी कृष्ण मैं तो निराशता सोच चुका हूं, लेकिन फिर भी एक ही आशा है, अगर आप कृपा करो तो असंभव भी संभव हो सकता है। ये महारजगुणी तमगुणी उग्र लोग भी बदल सकते हैं, अगर आप कृपा करो तो, कि मैं जानता हूं आपके शक्ति असमर्थ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तबे यदि तब कृपा है अहेतु की, अगर बिना वजह से उनके ऊपर कृपा करने का कोई कारण ही नहीं है, अरे किसके ऊपर कृपा कोई करता है, कोई कारण होता ना, बेचारा बहुत मेहनत किया है इसलिए उनको थोड़ा बख्शिश देना चाहिए, बेचारा बहुत परिश्रम करके आया है, इतने मांग रहा है, इतने रोया, तो थोड़ा कोई कारण होता है कृपा का, है ना, नहीं ये यहाँ बाढ़ आया है उनको थोड़ा देना चाहिए, अरे ये इधर उधर बिल्कुल अर्थ के में सब मरे पड़े बेचारे, ये देना, वो बेचारे एक्सीडेंट केस में पड़ा भाई, ये बेचारे बुखार में की तबीयत, कोई कारण होना चाहिए कृपा का, नहीं तो हम लोग कृपा कभी करते हैं क्या, नहीं करते हैं, कृपा का भी कोई कारण होना चाहिए, कोई हेतु होना चाहिए, लेकिन यहां तो कोई हेतु ही नहीं है, आपके कृपा उनके ऊपर होगा किस वजह से होगा भाई, कृष्ण अगर बोले मैं किस लिए कृपा करूं उनके ऊपर, क्या वजह क्या है, क्या हेतु क्या है, तब प्रभुपाद कहते हैं कोई हेतु नहीं है, आप अहेतु की कृपा करो, बिना कारण में कृपा करना पड़ेगा आपको। तबे यदि, अगर आप उनके ऊपर बिना कारण से कृपा करने के लिए चाहें, अहेतु की कृपा अगर करना चाहेंगे, सकल ही संभव है तुम इसे कौतुकी, कौतुकी मतलब आप तो कौतुक समझते ना, मजाक करने वाले, आप तो मजाक मजाक में कुछ भी कर सकते हैं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड को यही खेल खेल में बना देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। बोले आप तो खेलते हैं जैसे बच्चा खेलता है, भागवत में इसे लिखा है, नारद जी कहते हैं जैसे छोटे बच्चे कभी खेलता है तो नदी के किनारे कहीं जाता है, धूल में बनाएगा घर बनाएगा, फिर उसको जैसे गुड़िया जैसा बनाएगा, उसमें फूल लगाएगा, फिर उसको शादी कराएगा, कुछ करेगा, बच्चा का खेल है इसे बनाएगा, बना करके आधे घंटे के अंदर सब करेगा, आधे घंटे 40 मिनट के अंदर फिर उसको पैर में तोड़ देगा, पेशाब कर देगा, उस ऊर्जा खत्म, यही करते ना बच्चे। तो बोले आप ही तो वही हो, एक गुण बच्चों आया कैसे, इतने बखाड़े सृष्टि बना देते हैं, कितने प्रकार के डिजाइन के लोग बना देते हैं, क्या मनोभाव पता नहीं कैसे, सिटी हाई फाई सब ऐसे बन करके मजा देखता है, जब मन करता है फिर सारे सिमट तोड़ ताड़ कर पेशाब करके खत्म, हाँ मिटा देता है, तब मिटाने के लिए टाइम नहीं लगता, सारे सुहा कर देगा एक झोंक में। बोले आप तो कौतुक कर रहा है, मजा है आपके। तो इस प्रकार अगर आप इस मजाक में बिना किसी कारण से अगर आप उनके ऊपर थोड़ा आप कृपा करते हैं, तो क्या कृपा करते ना, कि भावे बुझा ले तारा बुझे वे सही रस, आपके प्रति जो रिलेशन है, जो संपर्क है, ये जो भक्ति है, आपके सेवा का जो भावना है, इसमें जो रस है, रस समझते हैं? रस किसको कहते हैं? रस शब्द दिए हैं, रस शब्द का व्याख्या प्रभुपाद जी ने स्वयं किए हैं, एक प्रैक्टिकल व्याख्या किए हैं रस शब्द का अर्थ। भक्ति रसामृत सिंधु का प्रीफेस पूर्वाभास में पढ़िए, प्रभुपाद जी ने स्वयं रस बोलते हैं। हम सब जानते हैं मेलो करके, एक लिक्विड रस होता है, बोलते हैं प्रभुपाद जी, बोलते हैं रस तो लिक्विड, लेकिन ये नहीं है। रस शब्द का असली अर्थ प्रभुपाद करते बोलते हैं, रस वो है जैसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी कोई कार्य करने के लिए उनका अंदर जो इम्पेटस, जो उनका इम्पेटस क्या बोलेंगे, उनका अंदर जो प्रेरणा आता है, जो मन में प्रेरणा आता है कि मैं ये करूंगा करके, ये जो प्रेरणा उसको प्रेस करता है, वही करता है, बार बार करता है, वो होता है रस। जैसे कोई फैमिली हेड है, कोई गृहस्थ है, अब उनके बच्चों के लिए जन्माष्टमी के दिन थोड़ा अच्छा ड्रेस लाएंगे, कोई फल फूल लाएंगे, उनको लेकर मंदिर में जाएंगे, मन में कितने उनके इच्छा होता है उनकी सेवा करने के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। और कई कोई कोई का खुशी के नहीं है, कुत्ता को लेकर के घुमा करके लेकर आऊ, बार बार करते हैं, कितने एज उस काम के लिए, कुछ भी काम, कोई देश प्रेमी देश के लिए करता है, कोई शरीर प्रेमी शरीर के लिए करता है, कोई परिवार प्रेमी कोई पत्नी प्रेमी, कोई निजी, जो भी कोई जो करता है बार बार उसको, ये जो क्यों करता है, क्योंकि इसमें कुछ रस उसको प्राप्त होता है, जो आनंद उसको मिलता है ना, इसको कहते हैं रस। दैट हैप्पीनेस, वही सुख, जिस सुख के कारण बारंबार इस जोखिम उठाते हुए काम करता है, उसको कहते हैं रस। कुछ रस मिलता है इसलिए लगा हुआ इसमें, दिन रात एक करके नेता लोग लगे हैं, क्योंकि उनमें उनको रस मिलता है। वह पैसा का रस हो, कुछ भी हो, किसी का रस नेम एंड फेम पाने में होता है, थोड़ा प्रजा प्रतिष्ठा पाने के लिए भी रस होता है, वो दिन रात एक करके उनके पीछे पड़े, थोड़ा मैं बड़ा बनूं, किसी भी प्रकार इसी को कहते हैं रस, जो जिसमें जिसका बारंबार करने का इच्छा होता। तो इसी प्रकार आपके सेवा करना और आपके अनुगत होना, आपको पूजा करना, इसी में जो बार बार जो रस है ना, वो तो असली रस वही है, इसी को रस कहते हैं, बाकी सब निरस है, यही केवल रस है। तो ये जो रस किभावे बुझाले तारा बुझावे सही रस, रस तो केवल वही है कि आपके सुख में सुखी हो जाए, आपके अनुगत हो जाए, आपके सेवा में जुड़ जाए और सेवा करना चाहे मन में, ये जो भाव, ये जो रस है, इसमें जो सुख है, इस सुख का तुलना इस जगत में ऊपर जगत में भी नहीं है। और हम लोग बनावटी हमारा इसी के लिए हुई, सिर्फ सुख के लिए बोलते, सही रस कैसे मैं बुझाऊं उनको, अरे आप लोग का मैन्युफैक्चरर इसके लिए हुआ है ना, नहीं, यू आर मेड फॉर ओनली फॉर दिस, कैसे बुझाऊं मैंने। तो इसलिए एतक कृपा करो प्रभु करी निज बस, मुझे आपके बस करके उनको भी बस में करना पड़ेगा, आपके कृपा करके उनको बस करेंगे, नहीं तो वो तो सुनेंगे ही नहीं, महारजोगुणी तमोगुणी फास्ट लाइफ में, लेकिन आप अगर कुछ चमत्कारी करेंगे तो बैठकर सुनेंगे। हाँ मैं ही बोलूंगा, मैं तो बोलने के लिए आया हूं, लेकिन सुनेंगे थोड़ी, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो अगर आप कृपा करेंगे ये भूत प्रेत भी बैठेंगे तो मनुष्य तो है ही नहीं, भूत प्रति कोटि के वो भी बैठेंगे, आपकी कृपा जरूरत है, नहीं तो कोई आएंगे नहीं। तब बोलते हैं तुम्हारा इच्छा है सब है माया बस, ये माया में तो फंसे हैं, महामाया में चंगुल में बुरी तरह से फंसे। बोलिए महामाया कंट्रोल कौन करता है? आप ही कहते माया धक्खेण प्रकृति सुयते सचराचरम, ये चराचर जगत में आप ही तो हो जो माया को रेगुलेट करता है। तो मुझे भी अच्छी तरह से पता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं तुम्हारा इच्छा है सब है माया बस, आपकी इच्छा से ही सब माया में फंसे हैं, और तुम्हारे इच्छा है ना सब माया, आप इच्छा करोगे तो डिलीट बटन मार देंगे, माया खत्म, आपके ऊपर है भाई, हम अपना शक्ति से माया के साथ डीलिंग कर ही नहीं सकते, नेवर एवर। कोई तपस्या, कोई जप तप साधन नहीं तो माया को पंगा ले लो, अरे बड़े बड़े सब हट गए, हमारा तो कोई गिनती में नहीं है। अब भगवान ने स्वयं बोले मम माया, ये माया मेरा है भाई, तुम कौन हो उसके सामने आने वाले, दृढ़तया इम्पॉसिबल। फिर कैसे माया से बचे ना, मामे भये प्रपद्यन्ते मेरा शरण में आओ, मैं माया को बोल दूंगा ये मेरा आदमी छोड़ो, सो ये सार है, इस सार तुरंत इस सार बोल के छोड़ दे। तो इसलिए अगर आप कृपा करो, ये महामाया में बुरी तरह से फंसे हुए रजोगुणी तमोगुणी लोग भी वो भी छूट जाएंगे। तब इच्छा हय यदि तादर उद्धार, अब आप ही ने मुझे लेकर आया, अगर आप इच्छा नहीं होता मुझे क्यों लाता, अरे आपका इच्छा है उनको उद्धार करने के लिए, अब इच्छा को मैनिफेस्ट कीजिए प्रभु, आपकी इच्छा होगा तब उनका काम बनेगा, उद्धार होगा। भगवत इच्छा के बिना किसी का उद्धार हो ही नहीं सकता। हम बोलेंगे मैं उनको हेल्प कर दूंगा, मैं ले आऊंगा, हुआ रही हूं कुछ नहीं, हम लोग कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, केवल भगवान की इच्छा हो, भगवत कृपा हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी बोलते तब इच्छा है यदि तादर उद्धार, अगर आप कृपा करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि उसे अमेरिकांश को भी मैं भक्त बना दूं तो बन जाएंगे, आपकी इच्छा से क्या नहीं बनेगा, हो सकते हैं। बुझीवे निश्चय तबे कथा से तुम्हार, और ये महाभूत प्रेत अमेरिकांश भी तुम्हारे कथा तुम्हारे फिलोसफी को समझ लेंगे, वो बुझ समझ जाएंगे। केवल आपकी कृपा की आवश्यकता, आपकी इच्छा की आवश्यकता है। थोड़ा सा इच्छा करोगे कि वो लोग भी मेरे बारे में जाने, भक्त बने, और बनेंगे फटाफट, वो किसी ना बने। भागवत कथा से तब अवतार, तो कैसे वो भक्त बनेंगे, देखिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, उनका मन में बिल्कुल एक ही डिसीजन है, किसी को अगर भक्ति में जुड़ना है, उनको सुधारना है, उद्धार होना है, तो एकमात्र है भागवत श्रवण में ही उद्धार होगा, वही बोलते हैं, भागवत श्रवण में ही होगा, पठन में नहीं होगा, श्रवण के बाद पठन होगा। देखिए भक्ति के अंग श्रवण है, पठन नहीं है, लेकिन पठन सब्सिडियरी श्रवण है, ये श्रवण का साइड इफेक्ट उपांग है, क्योंकि पहले जन्म तो बुक्स होता नहीं था, किताब ही नहीं था, तो कैसे ही पढ़ेंगे, तो इसलिए सुन कर करते थे, तो सुनना अवेलेबल नहीं है तो बुक अवेलेबल, तो बुक पढ़ो, ये भी श्रवण करना है। कोई शुद्ध भक्त के लिखा हुआ जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को पढ़ना वो भी श्रवण है, श्रवण का उपांग। डायरेक्ट श्रवण नहीं हुआ तो इनडायरेक्टली श्रवण करो, पढ़ो, लेकिन अगर डायरेक्ट श्रवण अवेलेबल है तो उसको छोड़ना तो महामूर्खता है। आई एम डूइंग रीडिंग, आई कैंट गो फॉर क्लास, महामूर्खता है ये, है ना, तो इसी को कहते हैं ये भागवतर कथा से तब अवतार। बोले भागवत तो साक्षात सनातन गोस्वामी कहते हैं यही कृष्ण स्वयं है, श्री कृष्ण परिवर्तित। सनातन गोस्वामी बोले भागवत क्या है, कृष्ण का डिफरेंट मैनिफेस्टेशन, श्री कृष्ण परिवर्तित, श्री कृष्ण परिवर्तन होकर भागवत बनकर के आ गए। तुम्हार अवतार धीर हया सुने जदी काने बार बार, देखो प्रभुपाद जी काल बोलते हैं कोई काम एंड क्वाइट धीर होकर के अपने कान में भागवत क्लास अगर बार बार सुनेंगे, धीर हया सुने जदी काने बार बार, बारम्बार बोलेंगे, एक आध बातों के संडे को जाता हूं मैं, हाँ साल में एक आध बार जाता हूं, सुन लेता हूं, अभी सुन लेता हूं, फोन देखता हूं, ये करता हूं वो करता हूं, बोले नहीं कैसे सुनेगा, धीर होकर के अटेंटिव हियरिंग, बिल्कुल अप्ट लिसनिंग, इस प्रकार अटेंटिव हियरिंग कर कोई बार बार करे तो ये हो ही नहीं सकता कि वो ना बदले, भक्त ना बने। बाकी 50 साल से मंगला आरती आता हूं, भगवान की आरती करता हूं, डोनेशन भी देता हूं, अभी तक पत्थर को पत्थर, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं किया, केवल 8 बजे आता हूं, भले ना कराऊं, बिना नहाए आऊं, कैसे भी आऊं, लेकिन आता हूं, बड़े ध्यान से सुनता हूं कान में भागवत की क्लास, तो आपको समझ नहीं पाएंगे कितने जल्दी से आपका हृदय परिवर्तन होगा, कहां से कहां पहुंच जाएंगे। ये विधि श्लोक, उनका पूर्वजों के से भी ये संस्कार नहीं था, मैं बड़े बड़े सीनियर प्रभुपाद डिसिपल के मुख से सुना हूं वो लोग अमेरिकन जो बता रहे थे, जो हम उनको अभी गुरु करके मानते हैं, वो लोग बताते हैं, बोलते हैं हम वो कल्चर तो होता नहीं था, कल्चर कुछ ही सुने, राम कृष्ण कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं था संस्कार, हमारा जो संस्कार सभ्यता था, जो 4 नियम हम पालन करते ना, वो तो कॉमन लाइफ था, है ना, नहीं 4 नियम समझते ना, जो उनका जीवन के प्रिंसिपल था, मतलब नशा करना, नॉन वेज खाना, इलिसिट सेक्स करना, जुआ खेलना, बोले दिस इज लाइफ, ये नॉर्मल लाइफ, बच्चे से भी इसके बिना जीवन जी सकते हैं, कोई उनका दिमाग में होता नहीं था। हाँ, दिस इज, पढ़ लिख करके ट्रेंड होकर के ही काम करते थे। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में इसी को नहीं मानते, पाप मानते, बुरा कर्म मानते, वो लोग दिस इज कर्म ओनली, वो जो नहीं करते हैं बुरा है। जब प्रभुपाद जी ने उनको सिखाए, कुछ लोग अच्छे अच्छे स्टूडेंट समझ कर बदलने, उनका माता पिता बोले वाह ये क्या बना दिया उनको, अरे देवर पढ़े लिखे सिविलाइज्ड थे, नॉनवेज भी नहीं खाते हैं, इलिसिट सेक्स नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते हैं, व्हाट ह्यूमन लाइफ इज, ये क्या है जीवन फिर, एक गाय भैंस बना दिया, गाय भैंस ये सब नहीं करते, ये क्या कर दिया तुमने। मतलब इस प्रकार के विचारधारा जिसका था, जिनके संस्कार समझ पूर्वजों से पीढ़ियों से ऐसा नहीं किए थे, लेकिन ओनली विद इन फ्यू ईयर्स, अरे दो चार साल में, एक आध साल में ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गए। अभी हम ही लोग भारतीय ब्राह्मण कुल वाले चरण छू करके उनका आचार्य करके पूजा करते हैं, क्या परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन ये कैसे हुआ, क्योंकि वो अप्ट लिसनिंग, बड़े ध्यान से धीर होकर के इस भागवत की कथा सुनने लगे प्रभुपाद जी से। केवल इस बात को ही कहते हैं, भागवतर कथा से तब अवतार, धीर हया सुने जदी काने बार बार। एक बात कहूं, विदेश लोग जिस क्लास में आते हैं ना, ये सुनते हैं ना, हम लोग तो पता नहीं इस जीवन में इसे मूड आएगा कि नहीं, पक्के बिल्कुल सुनते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन ही पूछते हैं, समझना भी चाहते हैं, ये है उनका अंदर। तो इस प्रकार धीर हया सुने जदि काने बार बार, अगर कोई कान में बिल्कुल अटेंटिव होकर के उसको सुने, अटेंटिव कहते हैं धीर होकर, मतलब कोई कोई आते तो है क्लास में, लेकिन ये 50 काम ही वो भून देखते हैं, इधर जाते हैं, ये सोचते हैं, घड़ी देखते हैं क्या होगा, बोले ये अटेंटिव हियरिंग नहीं, ये तो केवल क्या करो बैठे हैं प्रभु जी पर, क्लास में बैठना चाहिए तो इसीलिए बैठता हूं, नहीं, इस भाव से धीर है या सुने यदि काने बार बार। तब प्रमाण भागवत से लेते हैं, श्रीमद भागवत से श्लोक उदाहरण के प्रमाण स्वयं भागवत में लिखा गया है, सुन्नतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कोई स्वकथा है कृष्ण के कथा को कोई बारंबार, जो पुण्य है महापुण्य है, आप पुण्य कर्म करने के लिए हजारों करोड़ों खर्चा करते हैं, विदेश में भागवत कथा करते हैं कि मैं बड़े पास कर्म करता हूं, गंगा स्नान करने जाते हैं, तीर्थ भ्रमण करने जाते हैं, क्या क्या पुण्य के लिए कितने बजट खर्चा टाइम एनर्जी लगाते हैं, बोलते हैं आपको पता नहीं ये पुण्य तो सब कचड़ा है, सबसे महा महा महापुण्य है अगर भागवत श्रवण करेंगे, उससे बढ़कर पुण्य कर्म कोई हो ही नहीं सकता। इसी बोलते हैं सुन्नतांग, भागवत में लिखा गया बात, सुन्नताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, भागवत की कथा सुनना और बोलना उससे बढ़कर पुण्य कर्म हो ही नहीं सकता ना, श्रेष्ठ पुण्य कर्म भागवत सुनना। इस पुण्य करने से क्या होगा भागवत सुनने से, ना हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, जो अभद्र तीज, जो कचड़ा, जो कलमस, जो कंटामिनेशन हमारे हृदय में पड़ा है, हम उसे निकाल सकते हैं क्या, अरे सुपर हाई डिटर्जेंट पाउडर भी लाओ, ये बाहरी शरीर भी नहीं, शरीर में भी डिटर्जेंट पाउडर नहीं लगा सकते, बड़ी सब चाहिए, वो कपड़े में डाल सकते हैं, कपड़ा को फाड़ सकते हैं, फटा सकते हैं, लेकिन शरीर में हाथ नहीं लगा सकते, अंदर तो बात ही क्या है, अंदर तो हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, हृदय के अंदर जो कचड़े भरा हुआ है, जो कर्मस कंटामिनेशन भरा पड़ा है, तो उसको कैसे धोएंगे। हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, जो अभद्र अंदर पड़ा है उनको कैसे धुलता है, ये श्लोक में भागवत प्रमाण कहता है, हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी विधिनोति सुहृद सताम, ये भगवान के लिए ये श्लोक कहा गया है, प्रभु अगर आपके कथा जो भागवत में वर्णित है, कोई आपके कथा को धीर हो करके अटेंटिवली कोई सुने, तो हम तो कर नहीं सकते, हमारे शुधन पर कैसे होगा, विधिनोति धुनोती मतलब धुलना, विधुनोति विशेष रूप से धुलना, अच्छा तरह से धुलाई कर देना, कैसे विधुनोति होता है, बोले कि आप ही हृदय में घुस करके, बोले हृदय में तो बैठे हैं लेकिन वो निकम्मा भगवान होकर बैठे हैं, केवल साखी देखता हूं, ओके ओके सैंक्शन, इसके लिए फालतू भगवान रूप में परमात्मा रूप में बैठे हैं, वो कुछ करता नहीं है, बैठे सब देखते हैं जानते हैं, कुछ करते नहीं, लेकिन अगर भागवत सुनेंगे आप ध्यान से, तब वो जो काल पैदा हुए ना, जो एक्टिव कृष्ण नटखट, वो आ जाएगा प्रविश्य कर्ण रंध्रेण, आपके कान के होल के द्वारा घुस जाएगा वो नटखट कृष्ण, आपके कर्ण रंध्र में प्रवेश करके हार्ट में चला जाएगा, वो एक्टिवेट कर देगा जाकर के। क्या करेगा जाकर के? धोबी का काम करेगा, धुलाना काम किसका होता है? धोबी का। आप थर्ड क्लास समझते हैं, लेकिन ये जो अंतर हृदय शोधन जो धुलाई, वो कोई धोबी के बाप भी नहीं कर सकता, और उसको धुलाने कई जन्म का कचरा पड़ा है। आप तो दो चार दिन महीने के धोबी के देते नहीं, हम नहीं धुल सकते हैं, वस्त्र में अंत होएगा, लेकिन ये कोई कचरा आजकल का है दो चार दिन का है क्या? अरे तीन दिन से जन्माष्टमी में जाता हूं, कपड़ा नहीं धोया, दे देता हूं, डाल देता हूं। नहीं, ये तीन दिन का नहीं, 3 करोड़ जन्म से ही धोया नहीं, हृदय में पड़ा है। तो इसी के लिए साधारण धोबी तो कर नहीं सकता, उनका पास ऐसा कोई पाउडर को मशीन उपाय नहीं धुल, तो केवल वही धोबी है धुलाने वाला भगवान ही है। हृदय शोधनकारी वो वासरमान कृष्ण, वो घुस जाते हैं, वो बिना पेमेंट भी देना नहीं पड़ता उनको, बिना पेमेंट में वो ऐसे ही धोते हैं, बोलते विशेष धुलाई, सुपर क्लीनिंग। आजकल तो बिना पानी में धोते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्राई क्लीनिंग। यस गुड, ड्राई क्लीनिंग। पता नहीं बिना पानी में कैसे धोते पूरे गंदगी, और हम भी इसी को मानते हो ड्राई क्लीन। अरे ड्राई क्लीन कैसे हो सकता जो भी हो तो, लेकिन भगवान कर्ण के होल में प्रविश्य कर्ण रंध्रेण, कान के होल से अंदर घुस जाते हैं। किस प्रकार घुसते ना? भागवत श्रवण करने से, धीर धीर भाव से घुस करके हृदय को जाकर हृदय को धोते हैं, विशेष रूप से धुलाते हैं। विधुनोति सुहृत सताम, आपने सहृदय, आपने सबसे नजदीक मित्र फ्रेंड बन करके हृदय को शोधन करते हैं। जैसे जैसे भागवत आप बड़े धीर भाव से सुनेंगे, ऐसे ऐसे हृदय का शोधन होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आपका परिवर्तन तभी होगा जो हृदय बदलेगा, हृदय शोधन होगा। हृदय शोधन हो गया तो एक ही उपाय है, भगवान घुसकर धोएंगे। आप तो कोई उपाय नहीं, कोई धुल सकता है? कोई उपाय नहीं, कोई नहीं धुल सकता। वो कृष्ण स्वयं, उनका सामर्थ्य है, ये घुस जाएंगे हृदय में, हृदय में जा करके हृदय की जो स्थिति की उसको धो सकते हैं, उनका पास ये उपाय है और वो कर सकते हैं। तो उनको ये काम में लगाने के लिए उपाय केवल सीरियसली क्लास अटेंड करना, भागवत बारंबार कान में सुनना, धीर है सुने यदि काने बार बार, तब जाकर हृदय शोधन होगा। सुहृत सताम, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। भागवत में ये श्लोक भी कहा गया, भगवान बोलते नहीं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो अभद्रेषु, अभद्रेषु प्लूरल सेंटेंस कहा गया कि बहुत सारे अभद्र, मतलब थोड़ा एक अभद्र, अभद्रेषु अनेक अनेक अभद्र है, कहता नहीं कचड़ा के स्टोर हाउस है, अभद्रेषु उनको नष्ट कर देंगे, सारे डिलीट कर देंगे। किसलिए डिलीट हो जाए? नित्यं भागवत सेवया। नहीं, हम भागवत कथा सप्ताह किए थे ना 5 साल पहले, वो क्या? नहीं नहीं नहीं, भागवत में लिखा गया है, भागवत का अगर पूर्ण फायदा उठाना चाहते हो, भागवत के द्वारा हृदय शोधन करना चाहते हो, भागवत द्वारा कृष्ण को हृदय में बैठाना चाहते हो, तो नित्यम एवरीडे, नित्य शब्द का अर्थ एवरीडे। ऐसे नहीं कि दो चार दिन सप्ताह में, ओनली संडे, या जीवन में एक हफ्ता कर लिया, नो नो नो। ये भागवत स्वयं लिखा गया भागवत में कि नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत की सेवा करो और हृदय शुद्ध होगा। नष्ट प्राय सहद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। क्योंकि भगवत का जो श्लोक है, अति उत्तम श्लोक है भगवान, इसी में निष्ठा भक्ति में लग जाएगा, अड़िग निष्ठा हो जाएगा, टस मस नहीं होगा भक्ति में, ऐसी स्थिति ला देगा, बना देगा आपको, बिल्कुल बदला डालेगा, क्या से क्या बना देगा, ये करवा देगा। निष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामलो भादयश्चे, जो इस प्रकार रज और तम भावा काम लोभ आदि जिसमें हम ग्रस्त हैं, भरे पड़े हैं, दासे एत चेत एतिर अनाविद्धम स्थितं सत्य प्रसिद्धति, उनको ऐसे कचड़ा को काम लोभ रज गुण को तम को निकाल कर फेंकेगा, विशुद्ध कर देगा, विशुद्ध सत्य सत्य प्रसिद्धति, बिल्कुल सत्य में स्थापना कर देगा। ये काम, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्लीनिंग, ये शुद्धिकरण तभी संभव हो सकता है जब एवरी डे आफ्टर लिसनिंग प्रतिदिन धीर भाव से भागवत को श्रवण करे तो। बोले ये सच में होता है, प्रकट प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। इस्कन सोसाइटी इज दी बेस्ट एविडेंस। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने, अभय बाबू ने 66 अगस्त में बोर्ड हुए जलदूत में कलकत्ता से, 40 रुपया साथ में था, कोई मित्र पात्र नहीं थे। इस अवस्था में कलकत्ता में सीप में बैठे महीना दिन के यात्रा करके, उनके यात्रा करते समय 2 बार हार्ट अटैक हुआ था, इसे बुरी तरह से हुआ था, और सोचते कि मर ही गया। मैंने सारे सीप वाले मैनेजर भी कैप्टन बोला था कि अब डेड बड़ी हम क्या करें, समुद्र फेंक दें, क्या करूं। एक संत महात्मा है, जब सेकंड टाइम हार्ट अटैक हुआ उनका, और उनके कृष्ण जन्माष्टमी सीप में किए थे, हाँ जन्माष्टमी किए थे, व्यास पूजा आज के दिन में, राधाष्टमी सब सीप में किए थे। अब क्या करें, इसी समय उनको टिकट मिला जाने के लिए, वही सीजन में मिला, वही चतुर्मास में लोग जाते हैं धामवास करने के लिए, चतुर्मास में जन्माष्टमी के अवसर पर वो निकले विदेश जाने के लिए। यस, वो जब यात्रा शुरू की 4th दिन ही जन्माष्टमी था। अब सीप में जो वर्कर्स होते हैं तो महातमगुणी समुद्री जीव खाने वाले थे सब, उनको बैठा करके कृष्ण की कथा सुनाए, स्वयं कुकिंग करके उनको फिस्ट खिलाए जन्माष्टमी, और तो कुछ जानते नहीं जन्माष्टमी क्या होता है। अकेले वो वृद्ध व्यक्ति कुछ लेकर गए थे समन, वो जानते थे जन्माष्टमी आने वाला 4 दिन, तो वहां से सामग्री लेकर गए थे जन्माष्टमी करने के लिए, वो छोटे मोटे जो भी समुद्र पानी में अभिषेक किए होंगे कि यहां से पानी लेकर गए होंगे पता नहीं, जो भी हो किए फेस्टिवल, आपके जैसा कल स्टेज में किए तो ऐसा नहीं किए होंगे, जो भी हो शिव के अंदर जैसे किए होंगे, उनको कथा कीर्तन सुनाए, प्रसाद खिलाए। वही 4 दिन के बाद में जो जन्माष्टमी फेस्टिवल हुआ, पूरे शिव के स्टाफ, उनके मैनेजर उस स्वामी जी के प्रति आसक्त हो गए, बहुत अच्छे, क्या खिलाया, क्या मजा आया। अब इसी दिन हम अब 25 साल से वर्क काम करते हैं, ऐसा कभी मजा नहीं आया था, हैं? ये जन्माष्टम फेस्टिवल कराया। और दूसरे दिन उनके जन्मदिन था, वो तो किसी को बताएंगे नहीं, चुपचाप किए होंगे अपना जो भी किए होंगे आज के दिन, और जो भी आगे राधाष्टमी भी आया है सभी किए उन्होंने शिव के अंदर, और इसी के बीच में उनको हार्ट अटैक हुआ था। पहले हार्ट अटैक हुआ पड़े तो कैसे भी कैसे बचे, बोले चलो, लेकिन जो दूसरी बार हार्ट अटैक बड़े जबरदस्त हुआ था, सभी ने सोच लिए थे, प्रभुपाद जी भी आशा छोड़ देते, गया मैंने मर गया, लेकिन ये जो बुरी तरह से जो दूसरी हार्ट अटैक हुआ था, इसी में प्रभुपाद जी सेंसलेस अवस्था में पड़े थे, इसी में स्वप्न देख रहे हैं, साक्षात कृष्ण आकर के वो जलदूत को पकड़ करके खुद ले रहे हैं, डोरी पकड़े हुए हैं, प्रभुपाद स्वप्न में देख रहे हैं, तुम क्यों डरता है भय, तुम्हारा भय नहीं होना चाहिए, मैं चल लेकर जा रहा हूं आपको। प्रभुपाद जी देख लिए थे, स्वप्न में देख लिए थे कि कृष्ण ही खींच कर लेकर जा रहे हैं उनको। जब कृष्ण इसलिए कविता लिख रहे हैं, तुम ही तो लेकर आया, मैं थोड़ी आ पाता, तुम ही खींच कर लेकर आया तो कुछ तो प्लान होगा आपका, ये बात करें। तो इसीलिए जो नित्यम भागवत सेवा, तो वही प्रकट प्रमाण की बात कह रहा हूं। कोई तोता, कोई चिड़िया हो, कोई पशु हो, उनको आप 5-10 साल 20 साल अगर पेट बनाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, वो आदमी की तरह सीख जाते हैं, बोलते हैं, को थोड़ा भद्र बन जाते हैं, लेकिन आदमी को बस में करना ये तो सबको पता होगा। अरे आपने बीबी बेटे को नहीं कर पाते, दूसरे को क्या करें, उन्हीं को सारे कमाई दमाई खिला पिला कर वही महाशत्रु बन जाते हैं, अब दूसरे को क्या है? ये इतने खतरनाक है आदमी को करना। एक सत्य बात है, वो भारत जब पराधीन था तो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, वो भारत के बड़े एक प्रसिद्ध धनी व्यक्ति माने जाते, इलाहाबाद का 50% उनका ही था, इतने बड़े धनी व्यक्ति, वो भी हाईकोर्ट लॉयर थे, तभी भी बैरिस्टर थे। अब इतने बड़े धनी व्यक्ति थे तो उनके बेटे, तो उन्होंने जब विदेशी शासन था भारत में, तब उन्होंने अपने सम्मान दिखाने के, सबसे बड़े धनी थे, बहुत मान्यता था उनका, तो अपना प्रेस्टीज दिखाने के लिए एक विदेशी युवक को अपने घर में अपॉइंटमेंट किए थे, नौकर बनाए थे, और उनको तभी जमाने में 10,000 रुपया महीना देते थे, तभी जमाने में 100 रुपया मतलब आजकल में 10,000 रुपया जितना है, 10,000 तब मैंने तो आजकल 50 लाख की कीमत, 50 लाख रुपया पेमेंट महीना में देते थे उस विदेशी को, तभी तो राजी हुआ था। और क्या उनका काम था, उनका घर में नौकरी क्या कर रहा था, 2 बार दिन में चेयर में हमेशा बैठा रहता था, अपना काम करता, चाय फाय पीता था, 2 बार जब मोतीलाल नेहरू आते थे तो खड़े होकर साइलेंट में था, प्रणाम नहीं करता था, जय हिंद नहीं बोलेगा, ऐसे ही साइलेंट मारता था बस। जो उनके साथियों के साथ कभी आते थे वो बैठा रहता था चेयर में बिल्कुल अपना शाम से, वो आते समय खड़े हो जाता था, इस सार बोल देता था बस, इतना ही उनका दिन भर में सेवा था। इसी के लिए लाखों लाखों रुपया देते थे महीना में उनके, और जा करके कोर्ट कचहरी में खड़े होकर मुछ तान करके सीना तान बोलते, सारे इंडिया को विदेशी शासन कर, मैं एक विदेशी को मेरा घर में रखा, ऐसे बोलते थे। अब लोग बोलते हैं हाँ मानना पड़ेगा, एक विदेशी वो भी आपका नौकर जैसे बना है, क्या करता है, 2 सेकंड का ड्यूटी करता है, हाँ? 50 लाख रुपया लेता है, इसी को मानते थे बड़ा, और अपने गर्व अनुभव करते थे। प्रभुपाद जी केवल कुछ ही समय के अंदर 66 में गए, 66 में बुरी तरह से, अभी समय अगर होगा तो मैं बताऊंगा किस किस प्रकार गए, वो 67 में पहला रथ यात्रा किए, और उसके बाद में तो अमेरिका, और प्रभुपाद जी गोलक धाम पधार गए 77 में, 67 में शुरू किए प्रचार, 77 में गए, अब समझ लो कितने समय था, 70 साल के वृद्ध व्यक्ति अकेले सिंगल हैंडेडली, और वो जो विदेशी लोग थे वो बिगड़े हुए विदेशी थे, कोई सजड़ हुए विदेशी नहीं थे, महा बिगड़े हुए भूत प्रेत दुर्बुत थे सारे, क्योंकि सब हिप्पीज थे, मतलब कपड़ा तो पहनते नहीं थे, जोड़ी जोड़ी बन करके कहां कहां किधर घूमते थे, चरस खा करके कंडम अवस्था में रहते थे, उन्हीं को पकड़े कोई अच्छे खासे सिविलाइज्ड विदेशी को नहीं पकड़े उन्होंने, बावरी में जाकर के, बावरी समझते किसको बोलते हैं, अमेरिका में वाशिंगटन में जो अच्छे व्यक्ति तो को उनको मिले नहीं, बावरी में गए, प्रोग्राम जो उनका सक्सेस शुरू हुआ बावरी में, झुग्गी छपड़ी हमारा भाषा में, समझते ना, जहां लेबर क्लास लोग रहते हैं, 4th-5th class के लेबर रहते हैं, वो पॉलिथीन के घर बना करके स्लम गटर के ऊपर अपना घर बना के रहते हैं, उसको जोगी बोलते हैं ना, तो अमेरिका में भी ऐसे लोग होते हैं, वो लोग तो जरूरी है ना समझा गए, तो उसको बोलते हैं कि बावरी। प्रभुपाद जी प्रोग्राम वहां किए उन्हीं लोगों हैं, और वो लोग को जो कमाए रेडी हैंड उसे खाएंगे पिएंगे, वो उनका तो भाई पशु से, और पशु भी हार जाएगा उनके सामने, ऐसे ही थे दुर्वृत्त, उन्हीं लोगों से प्रोग्राम करके उनको बदला दिए, ऐसे कुछ ही साल में उनका कपड़ा उतर गया, बाल उतर गया, अरे क्या उनका डिजाइन, हेडलाइट स्पॉटलाइट सब चेंज कर दी, हिस्ट्री ज्योग्राफी एवरीथिंग चेंज, ऐसे करना, और इतने विदेशी आ करके प्रभुपाद जी के सामने ऐसे हाथ जोड़ के संभ्रम से खड़े रहते थे, टॉयलेट तक साफ करने के लिए लाइन में खड़े रहते थे, ये सुजोग हमको मिले। प्रभुपाद जी प्राउड से उनके सामने कहते थे, ये प्रभुपाद जी की स्टेटमेंट जो कथा कहता हूं, उन विदेशियों के सामने कहते, बोले एक यूके वाले लड़के को मोतीलाल नेहरू में 50 लाख दे करके वो सैल्यूट मारता था, उसको बोलता था, बोले आप सैल्यूट क्या है, टॉयलेट साफ करने के लिए लाइन में खड़े हैं, मैं कब मुझे सौभाग्य मिले, मैं आपको पेमेंट देता हूं क्या, कुछ भी नहीं देता हूं, लेकिन आप ऐसे खड़े हैं, ये है ताकत भागवत श्रवण में। आप बोलते हैं परिवर्तन, ये परिवर्तन कर दिया एक आध 2 साल में, 67 में स्टार्ट, 67 में पहले रथ यात्रा 67 में की थे, ऐसे परिवर्तन कर दिए, ये संभव है, प्रकट प्रमाण है, बेस्ट एविडेंस। तो इसलिए नष्ट प्राय सहद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिक, निष्ठा पर भक्ति तभी हो जाएगा, और काम लोभ रजस तम सब शुद्ध हो जाएगा, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति जोगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार से कोई भागवत को ध्यान से श्रद्धा से सुने, भगवत तत्व को प्राप्त करेगा, और क्या होगा, भगवत तत्व विज्ञान भगवत तत्व को जानने के बाद मुक्त संगस्य जायते, वो मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, जीते जी मुक्त हो जाएगा। विद्यते हृदय गिनती खियंते चर्व संशया खियंते चस्य कर्माणी दुष्ट एव आत्मन। इसलिए बार बार बोलते हैं कि हृदय के गांठ जो है खुल जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, सारे कर्म करोड़ों जन्म का सारे क्षय हो जाएगा, नाश हो जाएगा, और आप दृष्ट एव आत्मनि ईश्वरे, आपने आप में ईश्वर को अंश आप हैं, ये अनुभव कर आई आम दी सर्भांट ऑफ कृष्ण, ये आपके समझ में आ जाएगा। तो इसलिए के करे बुझाव कथा यही बरचाई खिद्र आमी दिन हीन कोनो शक्ति नाई। तो प्रभुपाद जी ने अभी इस प्रकार मूड में आकर भगवान को प्रार्थना करते करते लिख करके अभी प्रभुपाद जी भगवान के कृष्ण के सामने मेंटली उनको एक वरदान मांगते हैं। हम लोग पता नहीं काल तक कितने दुआ मांगे होंगे, सबका प्लान प्रोजेक्ट हुआ होगा, प्रभु मुझे ये कर दो, ये दे दो, आप कृपा करो मुझे ये हो जाए ना। जिस दिन व्रत रखते हैं इस दिन तो झड़ी लग जाता है मनोती का, है ना नहीं? हाँ, अब पहले से एडवांस बुकिंग करते हैं हम, इस दिन वही मांगेंगे सब, मन में कर प्रार्थना करेंगे। अब प्रभुपाद जी ने इसी बुरी स्थिति में, इस दुखित अवस्था में, निराश हताशा में, अब कृष्ण को अपने मानस स्थिति में कृष्ण के पास पहुंच चुके हैं कृष्ण चरण में, और उनसे एक ही प्रार्थना करते हैं, एक वरदान मांगते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान से कुछ नहीं मांगते हो, नो, आप ही सब कुछ भाई आई विल आस्क फॉर यू, कुछ नहीं मांगते हैं, मांगना अच्छा चीज नहीं, भगवान को नहीं मांगते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने मांगे, सुनिए तो क्या मांगे, ये किसी शुद्ध भक्त मांगते क्या है, लेकिन क्या मांगते तो सुनो, क्या मांग किए, क्या वरदान चाहते हैं। दुख से जुर जर्जरित हो चुके हैं, हताशा निराशा में फटकने डू हियर, इसी स्थिति में हम लोग होते तो मांगते हैं, कोई पहचान का मिल जाए यार, कोई ये कंटेक्ट एड्रेस मिल जाए यार, हम यही चाहते हैं कोई देखभाल करे। लेकिन प्रभुपाद जी इसी बुरी स्थिति में अकेले में प्रभु कृष्ण से क्या वर मांगते हैं, यही वर मांगते हैं कि करो बुझाव कथा वर सही चाहिए। हे कृष्ण, अगर मुझे आप कोई वरदान देना चाहते हैं, एक ही वरदान दीजिए, मुझे ऐसे समर्थ बना दीजिए कि आपके कथा में इसको समझा दूं। दिस इज प्रीचिंग, मूड ऑफ प्रीचिंग। प्लीज बी मर्सीफुल अपन मी सो दैट आई कैन एबल टू मेक देम अंडरस्टैंड यू। मुझे ऐसी क्षमता दो ताकि मैं आपके बात उनको समझा सकूं। कि करे बुझीबे तारो बरो सही चाहिए, वो उनको मैं कैसे समझा दूं आपके बात, मुझे वही वरदान चाहिए। आप देखिए प्रभुपाद जी की मनस्थिति, इसी प्रकार के चाह, इस प्रकार के भगवान को वरदान मांगना, उसके पीछे कितने करुणा होना चाहिए, कितने कंप्यासन होना चाहिए। स्वयं खाने पीने बगैर बूढ़े अवस्था में कितने हेल्पलेस अवस्था में थे प्रभुपाद, लेकिन आप लिए कुछ नहीं चाहिए। हम लोग तो हेल्पफुल होकर ही तभी मांगते हैं, अधिकांश लोग तो काल शाम को वीआईपी पास के लिए वरदान मांगते थे, मुझे एंट्री वहीं से मिल जाए। यस, और यद्यपि वो आते देख सकते, इतना कोई खास भीड़ नहीं था तभी कर सकते, लेकिन फिर भी हमारे कितने कचड़ा भरा हुआ है, क्या हमारे इच्छा है, क्या हमारे चाह है, इतने डस्टबिन के लायक कचड़ा भी नहीं है, ऐसी सब भावना हमारे अंदर भरा पड़ा है। इसीलिए मांगते हैं थोड़ा मुझे इधर में सामने बैठ जाऊं, मैं थोड़ा ये कर लूं, ये प्रसाद खा लूं, उनके साथ मिल, ये सब थर्ड क्लास भी नहीं, 30th class। लेकिन प्रभुपाद जी बुरी तरह से हेल्पलेस कंडीशन में थे, दो दो बार हृदय की दौरा पड़ चुका था, कोई नहीं थे वृद्धावस्था में उनके लिए, अमेरिका में उतरेंगे सेल्फ ओनली एलोन बूढ़े आदमी, ना कुछ भी नहीं था, ना पैसा था, ना पहचान था, कुछ भी नहीं था। इस अवस्था में इसी प्रकार मदद तो नहीं मांगे, रो रो कर कृष्ण से ही मदद चाह रहे हैं। हे कृष्ण, अगर मेरे ऊपर कुछ अब कृपा करना चाहते हो तो ही मैं वरदान मांगना चाहता हूं आपके चरण में आज, कि मुझे ऐसे शक्ति दो ताकि मैं आपके बात उनको समझा दूं। रियल क्रिस्टल क्लियर प्रीचिंग मूड उसमें दिखाई पड़ता है, कितने सख्त कणर था उनके, ये बर मांगे उनसे कि करे बुझे बर कथा सही बर चाहे, वो बर दे दो मुझे कृष्णा, मैं उनको आपके बात समझाने के लिए समर्थ मुझे कर दो, तो कर दिए। इमीडिएट कृष्ण उनको वरदान दे दिए, नहीं तो एका साल में ये भूत प्रेत को वैष्णव बना दे, सुपर मैजिक। हाँ, अरे वो तो बने, हम भी अभी बनी रहे, वो मैजिक अभी भी काम कर रहा है, वो वरदान बर शक्ति अभी भी काम रहे। जितने यूथ भले अच्छे खाले पढ़े लिखे, जो भरी जवानी में भोग करने का पूरे सामर्थ्य शक्ति बिल्कुल जिस प्रकार भरा है, वो हुई लोग को दिमाग खराब करके आकर हरे कृष्ण करते हैं, बाल उतार करके, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। ये वही वरदान अभी भी काम कर रहा है, जो सुनेगा सो फंसेगा। यस, ये प्रोसेस है, तो ही वरदान काम करता है। वही वरदान प्रभु जन मांग करके फिर मांगने के पीछे कहते, खिद्र आमी दीना ही ना कोनो शक्ति नाई, मैं बहुत छोटा खिद्र हूं, बुढ़ा हूं, दीनहीन हूं, कोई शक्ति नहीं मेरे पास में, कोनो शक्ति नाई। अथच एने च प्रभु कथा बोली बारे, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता, आपके बारे में थोड़ा कुछ बोल सकता हूं, और तो आई हैव नो अदर कैपेसिटी, मेरे कोई सामर्थ्य नहीं है, आपके बात बोल सकता हूं, लेकिन आपके बात तो सुनेंगे सभी और सुन करके समझेंगे सभी, यही मुझे वरदान दीजिए। जे तुम्हारा इच्छा प्रभु करो ऐ बार, अब मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, आपके जो इच्छा है अब करो, करो करो तो करो, मार दो तो मार दो, मैं तो ही मांग करता हूं आपसे, दूसरा कोई मेरा इच्छा नहीं, एक ही वरदान चाहता हूं, मेक मी ए गुड टीचर। अखिल जगत करो वचन से अमार, अलंकृत करीबे से क्षमता तुम्हार। हे अखिल जगत गुरु, आपके ये बाएं हाथ के खेल भी नहीं है, बाएं अंगूठी के छोटे अंगूठी के खेल भी नहीं है, छोटी सी काम आपके लिए। क्या, मैं जो बूढ़े आदमी, मेरे मुख से जो शब्द निकलेगा, आप चाहें आपकी क्षमता से, आप आपके गुण से अलंकृत कर दीजिए। इट शुड बी डेकोरेटेड विथ योर पोटेंसी, कोटेड विथ योर पोटेंसी, आपको अलंकृत कर दीजिए, मेरे जो भाषा निकलूंगा, क्योंकि 70 साल के बूढ़ा का आवाज कैसा होगा, कोई सुरीली आवाज थोड़ी होगा, ना कोई म्यूजिशियन थे उनके साथ, कुछ नहीं था। इसी को बोलते हैं कि मेरे शब्द को आप आपके पोटेंसी में अलंकृत कर दो, ये बर मांगे, और ये बर काम किया। प्रभुपाद जी ने जो बुरी तरह से हताश होकर के वापस आना चाहते थे, 2-3 बार वापस आए, वो सीप वालों को रिटर्न टिकट है ना, ना है, मैं वापस चला जाऊंगा, यहां कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी सोचे और एक बार ट्रायल लेता हूं, और एक बार। फाइनली जब बिल्कुल हताश हो गए थे, एक दिन सुबह उठे, तब तो मंदिर फिर मंगला थे, कहां जाए, उठ करके प्रभुपाद जी ने चले गए एक पार्क में अकेला, वो प्रसिद्ध पार्क है हमारे लिए तीर्थ जैसा है, टॉमसन स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क सिटी में। अब वहां जाकर के ये पार्क में अकेले बैठ गए, इतने हताशा निराशा दुख में बिल्कुल हेल्पलेस होकर के जा बैठे, बैठ करके इतने दुख में, व्हाट कैन आई डू, अब क्या कर सकता हूं, लास्ट चांस कृष्णा प्लीज हेल्प, इस प्रकार के प्रार्थना वही अमेरिका के पार्क में बैठ करके सीधा डायल किए वैकुंठ को। डायल नंबर क्या है, ये 32 डिजिट का नंबर है वैकुंठ प्लैनेट का, वहां का वो लाइन हमेशा बिजी रहता है लेकिन ऑन रहता है। तो प्रभुपाद जी ने आंख बंद करके उसी को डायल किए, वो कोई वाद्य यंत्र कोई नहीं थी, अकेले ओनली एलोन इस पेड़ के नीचे बैठ करके 3 घंटा आंख बंद करके क्या करूं, आंख बंद करके पूरे ध्यान से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही टोन था। इसी टोन में कोई चेंज नहीं किया, हम लोग सब गायक शिरोमणि 2-2 मिनट में चेंज करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे, उनका मैं सुना हूँ इनसे, दोज हू आर रियली सुपर एक्सपर्ट सिंगर, उनका पहचान क्या होगा, जो मिनिमम 1-1.5 घंटा कोई टोन चेंज नहीं करे, एक टोन से गा लेगा, और प्रभुपाद जी ने 3 घंटा गाई इसी टोन में, 3 आवर्स कंटिन्यूअस सेम टोन। कोई हारमोनियम हारमोनियम कुछ था नहीं, ना कोई थे उनके पीछे गाने वाले, अकेले आंख बंद था, केवल आंसू निकल रहा था दोनों आंख से। यही वृद्ध व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठ करके हाथ ताली बजा करके 3 घंटा तक समाधि में चले गए इसी टोन में बिल्कुल, और वैकुंठ में भगवान बिल्कुल जग गए। वो जो इतने चार्ज हो गया, इतना हाई चार्ज हो गया, वो अभी तक काम कर रहा है, वही बैटरी काम कर रहा है। हम लोग सब बदलते, वही जो चार्ज हुआ था वही काम कर रहा है, वो डिस्चार्ज नहीं हुआ। 10,000 साल तक वो चार्ज रहेगा, डिस्चार्ज नहीं होगा। इतना ही उसी पार्क में चार्जिंग लगा दिए, इतने चार्ज करवा दिए। तो केवल इसी के दौरान, इसी को बोलते हैं कि मेरे शब्द में वो शक्ति दे दो कृपा करके, वो शक्ति दे दिए वही मंत्र गान के। इसी में 3 घंटा कीर्तन करके जब आंख खोले, सकड़ों नए युवक युवती चारों तरफ खड़े होकर डांस कर रहे थे, स्वामी मोर मोर। रूपाजी में, अरे ये भूत प्रेत सारे हैं, उनको अच्छा लगता ही बात। हम बड़े बड़े आर्टिस्ट बुला करके बड़े बड़े यंत्र के साथ में मेलोडी पार्टी प्रस्तुत करते हैं, कोई सुनने वाले होते नहीं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये घड़घड़ी जैसा आवाज में अकेला, लेकिन वो तो पागल होकर सब चारे सैकड़ों संख्या में खड़े थे। तो प्रभुपाद जी तभी कंफर्म हो गए, इट्स वर्किंग, ये काम कर रहा है, यकीन करो काम कर रहा है। काम कर रहा है, कर रहा था। जो जीवन में एक बार रामकृष्ण नहीं सुने थे, जानते थे, उनको भी, क्योंकि शरीर नहीं बुद्धि नहीं, सीधा हृदय में अटैक कर रहा है। ये जो महामंत्र है ये तो सीधा वहां अटैक कर रहा है हृदय में, सुहृत सताम। इस प्रकार से वरदान मांग करके प्रभुपाद, तब कृपा हैले मरा कथा शुद्ध हवे, आप अगर कृपा करोगे तब मैं कथा शुद्ध होगा, सुनिया सवारा शोक दुख जे घुचीवे, और उन लोग का सुख दुख हट जाएगा, उन्होंने समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे, अगर आपके कथा सुनेंगे और एक कथा सुनने के लायक बन पाए, अगर आपके कृपा मेरे ऊपर होगा तो मेरे कंठ से शुद्ध कथा निकलेगा और शुद्ध कथा तो काम कर जाएगा, दवाई तो काम करेगा ही। तब फिर प्रभुपाद फाइनल अपने मनोभाव व्यक्त करते हैं, आनी अच्छा यदि प्रभु हमारे ना चाहते, बोले हम यूजलेस गुड फॉर नथिंग। इस बूढ़ा व्यक्ति को जब आप इस अमेरिका स्थान में ले आया है, मैं अकेले आया हूं, तो आनी छ जदि प्रभु हमारे नाचाते, अब क्या नचाएगा आप ही जानते, मेक मी डांस, आप मुझे नचाने के लेकर आया था, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते, जैसे आप चाहते हो नचाने के लिए नचाओ, मैं बूढ़ा नाचने के लिए तैयार हूं, जो ताल में नचाना चाहता वही ताल में नाचूंगा, आप मुझे मेक मी डांस, नाचाओ नाचा प्रभु अनिच्छ मत नाचाते, नाचा नाचा प्रभु नाचा से मते। और उदाहरण देते हैं कैसे नाचने के लिए, ना कास्टर पुतली जथा नाचाओ से मते, जैसे पपेट डांस होता ना, पपेट खुद नहीं नाच सकता, काठ के पुतली वो थोड़ी खुद नाच सकता, हम लोग तो अपनी इच्छा से नाचते हैं करते हैं, वो थोड़ा दर्द हो, नहीं 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 थोड़ा जुकाम हो गया स्प्रे लगाते हैं अभी लेकिन काट के पुतली उनका कोई नाचना है ना, जख्म है ना, कुछ नहीं है उनका, कोई अपना कुछ हो ही नहीं। तो इसी प्रकार बोलते, मेरा अपना कुछ है ही नहीं, आई एम टोटली सरेंडर्ड, तुम जैसे धागा खींचोगे पैर उठेगा, धागा खींचोगे तो हाथ उठेगा, तो तुम ही हो सूत्रधार हे कृष्णा, काष्ठरी पुतली मत मुझे पपेट की तरह मुझे डांस कराओ, आई वॉन्ट टू बी ए पपेट इन योर हैंड, मैं आपका हाथ में एक कष्ट के पुतला बनना चाहता हूं, कुछ भी नहीं मेरा स्वाधीनता, अपना कुछ भी नहीं है, जस्ट आई वॉन्ट टू बी ए पपेट इन योर हैंड। क्या प्रार्थना है, कब हमारे अंदर ऐसी भावना आएगा, ऐसी भावना आने से तो कथा शुद्ध होगा, तब उसका इफेक्ट होगा। दिस इज द पावर, दिस इज द प्रेयर, दिस इज द मूड। ये 70 साल के बुद्ध व्यक्ति भक्ति वेदांत स्वामी 40 रुपया लेकर के, कोई पहचान नहीं था, माल जहाज में बैठ करके गए, अब जा करके ये कमाल किए, ओनली इन 10 ईयर्स संपूर्ण विश्व में हजारों लोगों का बाल उतार दिए, कपड़ा उतार दिए। ओ नौजवान है, पढ़े लिखे उनका, और बदलते जा रहे हैं, उतारते जा रहे हैं, है ना। नहीं तो ये कमाल प्रभुपाद जी ने किए थे, सिंगल हैंडेडली ऑल एलोन। एक बार तो बंबई में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो भी आता था प्रभुपाद से मिलने के लिए, लेकिन एकांत में वो प्रभुपाद से कुछ पूछना चाहता था, मन में बड़ा होता। एक दिन मिला उन्हें एकांत से, बोला स्वामी जी एक बात मेरा मन में है कई दिन से, मैं बोला मैं बहुत ईर्ष्या करता हूं। बोले क्या हो गया? बोला मैं आपने 5 पीढ़ियों से बिजनेसमैन हूं, मारवाड़ी हूं, 5 पीढ़ियों से पक्के बिजनेसमैन हूं, लेकिन मैं हार गया आपके बिजनेस। क्या बिजनेस है यार? बोले क्यों? बोले आपके कैपिटल 40 रुपया था, 40 रुपया के कैपिटल में और इसी जगह में जाकर बिजनेस शुरू किए, जो कोई नहीं थे, नो सपोर्ट, नो बड़ी कोई नहीं थे, हमारे तो चाचा कक्का ताऊ सब हेल्प करते हैं हमको बिजनेस में, यही दुकान लगा लो, हम ग्राहक भेजते हैं, कुछ करते, कोई नहीं थे, ऑल एलोन इतने बुढ़ी उम्र में 40 साल का पूंजी लेकर के क्या बिजनेस खेला आपने, 10 साल में 40 अरब खरब, यह स्वप्न भी नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी के बॉम्बे के टेम्पल में वो बता रहा था, व्हाट इज दिस, स्टार्ट बिजनेस विद 40 रुपीज विद इन 10 ईयर्स। अब कोई बिजनेसमैन अभी जन्म ही नहीं हुआ कि इसे किया कि इतने जल्दी इतने बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो जाए। तो इसलिए तो मैं घूट घूट करके द्वेष कर रहा हूं आपको, देखो क्या बिजनेस किया उन्होंने, क्या खेल किया। प्रभुपाद जी हंसने लगे, बोले तो सो आप बन जाओ बिजनेसमैन पार्टनर, मैं बन सकता हूँ ना? यस व्हाई नॉट, 40 खरब के बिजनेस है उसमें पार्टनर, ओ आई एम रेडी ना, लेकिन छोड़कर आना पड़ेगा घर परिवार। बोले मैं तो खुला है दरवाजा, मेरे तरफ से कोई नहीं, कोई पार्टनरशिप भी देना नहीं पड़ेगा, नो एग्रीमेंट नथिंग, केवल वहां छोड़ना पड़ेगा। यही तो गड़बड़ी है, छोड़े बिना बन नहीं सकते हम, छोड़े तो बिजनेस ऐसे किए। जितने भी व्यापारी वर्ग है उनके लिए चैलेंज है, प्रभुपाद जी उनके मुंह में चैलेंज के बोले देखो मेरा बिजनेस है ना। तो इस प्रकार उन्होंने 70 साल की उम्र में वो गए, और ऐसे ही दुर्वृत्त लोगों को लेकर के जब सबसे पहले उन्होंने शुरू किए इसका, वो स्वप्न सोचते थे, एक रेंटेड स्टोर फ्रंट लिए थे, दिन में दुकानदार चलता था, रात में किसी किसी फ्रंट में एक कमरा लेकर किराया वहीं रहते थे, वहीं से कोई भूत प्रेत को इकट्ठा किए। तो जब उनका सपना देखते थे, मैं इंटरनेशनल सोसाइटी बनाऊंगा, वो करूंगा, इसे करूंगा, और एक वकील को भी पटा लिए, बोले मेरे लिए पेपर तैयार करो, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराना है। क्या सोसाइटी? इंटरनेशनल सोसाइटी। बाप रे बाप, हम तो नेशनल यही द्वारका के सोसाइटी नहीं कर पाते, वो इंटरनेशनल सोच रहे थे, भिखारी थे, सोच करके वकील कागजात बना लाया, उनको पैसा नहीं दे रहे थे, गुलाब जामुन खिला करके वही उनका पेमेंट था, और कुछ था नहीं उनके पास में, क्या दे, गुलाब जामुन खिला करके वकील को पटाए, गुलाब जामुन खिला करके ट्रस्टी को पटाए, ट्रस्टी मतलब वो जो भूत प्रेत इकट्ठा किए थे सब, उनको वो कागजात बना करके लाया, बोला स्वामी जी मैं रेडी कर दिया, नहीं ट्रस्ट का भी साइन कर, बोले हु आर दी ट्रस्टीज, आप इंटरनेशनल ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ट्रस्टी कौन बनेंगे, 11 ट्रस्टी होना चाहिए ना, हो ट्रस्टी से बैठे ना इधर। वो वकील घूम कर देखा, आर दे ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट मतलब विश्वास होना चाहिए, विश्वास योग्य हैं वो लोग, कोई नहीं मानेगा तो हिप्पी से, बोले वही मेरे ट्रस्टी है, उन्हीं से साइन कराया, उनको पता ही नहीं था किसने साइन कराते ना। स्वामी जी बोलते ट्रस्ट, हुआ ट्रस्ट क्या था, कुछ भी नहीं पता था उनको भी, लेकिन स्वामी जी बोलते साइन कर तो साइन करा दिए, उन्हीं से सोसाइटी बना। इस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रजिस्ट्रेशन हुआ, अगर आज की तारीख में वर्ल्ड गिनी रिकॉर्ड में 2-2 बार ये रिकॉर्ड सृष्टि हुआ, पूरे वर्ल्ड में गिनी रिकॉर्ड में नाम आया है इस संस्था का, ऐसे दुर्बुद्ध से बना करके सोसाइटी। क्या पहला रिकॉर्ड आया है, कोई संस्था पूरा विश्व में नहीं है, ऐसा कोई सोसाइटी नहीं है जो एक बैनर एक मंत्र के नीचे एक कैप्टन के नीचे इतने देशवासियों अलग अलग भाषा अलग अलग संस्कृति अलग अलग स्थान अलग अलग पासपोर्ट अलग अलग प्रकार के उनके आईडी प्रूफ के साथ लगभग 128 कंट्री से अलग अलग उनका आईडी पासपोर्ट भी अलग अलग है एक साथ में कलकत्ता में आकर के कीर्तन किए हरे कृष्ण कीर्तन किए एक बैनर के नीचे जय प्रभुपाद करके कीर्तन कर रहे थे। वो आए थे वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आकर बोले वो तो अभूतपूर्व है अभी तक कोई सोसाइटी हो भी नहीं सकता जो इतने सारे सिटीजन्स को इतने सारे नेशनल को इकट्ठा करके एक यूनिट करके सब खिचड़ी खा करके नाच रहे थे हरे कृष्ण बोल रहे थे। डिश भी एक ही है मंत्र भी एक ही है पोशाक भी एक ही है हेडलाइट भी एक ही है अभी इस नाच भी स्टाइल एक ही है। अरे वो आश्चर्य हो रहे थे तो फर्स्ट एक ही सोसाइटी है इतने कमाल किया दूसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनी रिकॉर्ड में है। ऐसा अभी तक विश्व में कोई प्रकाशन संस्था नहीं है जो इतने सारे पुस्तक भारी मात्रा में प्रकाश किया और डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुका है। बीबीटी इज द नंबर वन इन द वर्ल्ड भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। इतने संख्या में पुस्तक विश्व में अभी कोई प्रकाशन विभाग नहीं हुआ जो किया ना कर भी सकता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखिए अभी हमारा संस्था कोई ज्यादा पुराना थोड़ी है 50 साल तो अभी हुआ है। क्या कमाल है ये पोटेंशियल था एक बूढ़े आदमी ऑल एलोन स्टार्ट किया और प्रभुपाद जी खुल कर कहते थे मैं अकेले वृद्ध आदमी जब इतने किया जाके विदेश में आप लोग इतने सारे भारतीय हो श्रद्धालु हो समझदार हो अगर आप लोग प्रयास करें तो क्या ना हो सकता है ना नहीं? तो हम लोग से अपेक्षा वो चाहते हैं प्रभुपाद जी ने आज उनके जन्मतिथि है ऐसे महाशुद्ध भक्त कृष्ण कृपा के श्री मूर्ति मूर्तिमान कृष्ण के कृपा के विग्रह हैं उनके कार्यकलाप से प्रमाणित कर दिए और उन्हीं हम लोग के लिए वो क्या चाहते हैं हम लोग जो भूत प्रेत अभी भी हैं हम लोग से वो क्या आशा करते हैं हम अभी उन्हीं के नमक खा करके बैठे हैं उन्हीं के अनुजाई हम लोग बोलते हैं आई एम इस्कन डिवोटी ये जो गर्व करते हैं उन्हीं के नाम लेकर के हमारा कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए ना भाई उनका बोलते हो उनका खाते हो व्हाट यू हैव टू डू हम लोग कुछ करना होगा ना क्या चाहते हैं हमसे वो बाकी कुछ नहीं चाहते हैं। जब उन्होंने गोलोक धाम प्रयाण कर रहे थे अंतिम समय उनका लास्ट डिजायर उन्होंने प्रकट किए थे मैं अभी जा रहा हूं जो जो आप चाहते हैं कि आप इस संस्था में कृष्ण के मेरे होना चाहते हैं मेरे होना हो गए जानते हैं मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता हूं मैं जाने के बाद यही आशा करता हूं आपसे आप मिल मिस करके टुगेदर एक काम कीजिए इकट्ठा एकत्रित व्हाट यू से एकजुट हो करके काम कीजिए आपस में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए इस काम के इकट्ठा कीजिए मिल करके आई वांट यूनिटी आप मिलकर काम कीजिए और हम जानते हैं हम कैसे काम को उनके परम चरम इच्छा को हम कैसे पालन करते हैं अब मैं किसी बोलूंगा नहीं आप सब समझ सकते होंगे। तो अगर इसी जीवन में ऐसे कृपा मूर्ति कृष्ण कृपा के मूर्तिमंत विग्रह के अंतिम इच्छा को हम पालन करने के लिए असमर्थ है क्या हम जीवन में करेंगे कितने कोड़ा पड़ेगा हमको पता नहीं क्या क्या वन में जाकर आगे पता नहीं है ना नहीं? तो इसलिए अभी भी समय है सुधर जाना चाहिए हम लोग को अभी भी चांस है सुधर जाना चाहिए। हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद की
हमारे का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे ये बहुत ही फेमस वैष्णव सॉन्ग है और आज से पहले कभी हमने इसके ऊपर विवेचना नहीं सुनी थी और महाराज से सुनने का मौका मिला महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ ही हम जाएंगे अब डिवोटीज दे कैन ऑल्सो ग्लोरीफाई श्री प्रभुपाद सो हमारे यहाँ कहीं सीनियर वैष्णव है वी कैन स्टार्ट फ्रॉम श्रीनिकेत प्रभु जी यस आपका स्पॉन्टेनियस प्रेम है प्रभुपाद जी से